ऑल नेशंस गोस्पेल पब्लिशर्स द्वारा कौन खो जाएगा? ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस विषय के बारे में इस डर से नहीं सोचना चाहेंगे कि वे नरक के बारे में वास्तविक सत्य की खोज कर सकते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वे खुद को बहुत तेज गति से नरक में फिसलते हुए न देख लें। अधिकांश लोग अपने विवेक को इन शब्दों से शांत करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और वह कभी किसी को नरक में नहीं डालेगा। इससे वे कल्पना करते हैं कि उनके अनंत जीवन का मामला निपटा लिया गया है और उनका पापमय जीवन स्वर्ग में स्वीकार किया जाएगा। निश्चय ही तुम जानते हो कि दुष्ट परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ जो अनैतिक हैं या जो मूर्तियों की पूजा करते हैं या व्यभिचारी या समलैंगिक विकृत हैं या जो चोरी करते हैं या लालची हैं या शराबी हैं या जो दूसरों की निंदा करते हैं या चोर हैं। कोई नहीं इनमें से परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। 1 कुरिन्थियों 6:9-10। परंतु कोई अशुद्ध वस्तु नगर में प्रवेश न करेगी और न कोई लज्जित करने वाला वा झूठ बोलने वाला, केवल वे ही नगर में प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने की जीवित पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27। कुछ और भी हैं जो यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि कोई नरक नहीं है, और एक अन्य समूह के पास मनुष्य द्वारा बनाई गई शिक्षा है कि मृत्यु के बाद हम आग से शुद्ध हो जाएंगे और उसके बाद स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यह अजीब है कि लोग नरक के बारे में सच्चाई से बचने के लिए क्या करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यह कहकर इससे बचते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, कि जब हम मर जाते हैं तो अंत होता है, कब्र से परे कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक को एक बार मरना चाहिए और उसके बाद परमेश्वर द्वारा न्याय किया जाना चाहिए। इब्रानियों 9:27। दुनिया की आबादी का एक और वर्ग यह मानता है कि जो ईसाई बनकर मरेगा वही दोबारा जिएगा, बाकी लोग मरेंगे और यही अंत है। आश्चर्यजनक रूप से दुनिया के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि जब आप मरते हैं तो आप फूल या गाय या सांप या किसी अन्य जानवर या प्राणी के रूप में दुनिया में वापस आते हैं। ऐसे और भी कई झूठ हैं जिन पर लोग नर्क के बारे में अपने मन को शांत करने के लिए विश्वास करते हैं। क्या कोई नरक है? एक व्यक्ति जिस पर हम सबसे ऊपर विश्वास कर सकते हैं वह है प्रभु यीशु। उसने नरक के बारे में बहुत कुछ कहा और इसलिए हम परमेश्वर के वचन से कई पवित्र शास्त्रों में से कुछ को निकालेंगे और देखेंगे कि वह क्या कहता है। जो कोई अपने भाई को निकम्मा मूर्ख कहेगा उसे नरक की आग में जाने का खतरा होगा। मत्ती 5:22। यदि तेरी दहिनी आंख तुझे पाप करवाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए अपने शरीर का एक अंग खो देने से अच्छा है कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे पाप करवाता है इसे काट कर फेंक दो। तुम्हारे लिए अपने पूरे शरीर के नरक में जाने की तुलना में अपने एक अंग को खोना बेहतर है। मत्ती 5:29-30। परंतु जो राज्य में होंगे वे अंधकार में फेंक दिए जाएंगे जहां वे चिल्लाएंगे और दांत पीसेंगे। मत्ती 8:12। उनसे मत डरो जो शरीर को मारते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि ईश्वर से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मत्ती 10:28। और जहां तक तुम्हारी बात है कफरनहूम, क्या तुम अपने आप को स्वर्ग तक उठाना चाहते थे? तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा। यदि आप में किए गए चमत्कार सदोम में किए गए थे तो यह आज भी अस्तित्व में होगा। मत्ती 11:23। जैसे जंगली पौधे इकट्ठे होकर आग में जला दिए जाते हैं वैसे ही युग के अंत में भी ऐसा ही होगा। मनुष्य का पुत्र अपने दूतों को अपने राज्य से उन सभी को इकट्ठा करने के लिए भेजेगा जो लोगों को पाप करते हैं और वे सब जो बुरे काम करते हैं, और उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल देंगे जहां वे दुहाई देंगे और अपने दांत पीसेंगे। मत्ती 13:40-42 और 49-50। मित्र, तुम बिना विवाह के वस्त्रों के यहाँ कैसे आ गए? राजा ने उससे पूछा, परंतु उसने कुछ न कहा। तब राजा ने दासों से कहा कि उसको हाथ पांव बांधकर बाहर अंधकार में फेंक दे, वहां वह रोएगा और उसके दांत पीसेगा। मत्ती 22 पद 12 से 13। हे सांपों और सांपों के पुत्र, तुम नरक में दंडित होने से बचने की अपेक्षा कैसे करते हो? मत्ती 23 पद 33। तब ये अनंत दंड भोगने के लिए भेजे जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में जाएंगे। मत्ती 25 पद 46। ये पूरी बाइबल की केवल एक ही पुस्तक में से कुछ ही शास्त्र हैं, और कई और भी बहुत कुछ हैं। नर्क कैसा है? एक दिन यीशु ने पर्दा वापस खींचा और हमें नर्क की एक झलक दी। मैं लूका 16 पद 19 से 31 तक यीशु हमें एक चित्र देता है कि नरक कैसा है। वह हमें कुछ भयानक दिखाता है जो मनुष्य की आंख ने पहले कभी नहीं देखा है। महान शक्ति से जलती हुई नरक की आग, और इस महान आग के समुद्र के केंद्र में एक आदमी है। यह आदमी सोया नहीं है, वह जाग रहा है, वह जीवित है, और जो कुछ उसके आसपास हो रहा है उसके प्रति वह सचेत है। वह देख सकता है, वह महसूस कर सकता है, वह सुन सकता है, और वह अपनी जीभ से स्वाद ले सकता है। यह आदमी कभी चलता था और इस धरती पर रहता था जैसे हम अब करते हैं। उसने प्रचारकों या भविष्यद्वक्ताओं को सुना था, जैसा कि हम में से बहुत से लोग सुनते हैं। दुख की बात यह है कि उसने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज की तरह बहुत से लोग परमेश्वर के वचन और वचन के प्रचारकों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस आदमी ने सोचा नहीं था और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह सोच सकता था कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है और इसलिए वह उसे नरक में नहीं फेंकेगा, और यदि वह वहां उतर भी जाता तो उसे नरक से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त पुजारी थे। मेरे दोस्त, इन सब के बावजूद वह नरक में उतरा और यहाँ हम उसे इस आग की लपटों में देखते हैं। उसके चेहरे को देखो और दुख को देखो, उसकी आंखों को देखो और निराशा के महान भय को देखो, उसके भयानक रोना को सुनो जब वह पिता इब्राहिम को पुकारता है, मुझ पर दया करो और लाजर को कुछ पानी में अपनी उंगली डुबाने के लिए भेजो और मेरी जीभ को ठंडा कर, क्योंकि मैं इस आग में बड़ी पीड़ा में हूँ। तब हे पिता इब्राहिम, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि लाजर को मेरे पिता के घर, जहाँ मेरे 5 भाई हैं, भेज दे। कम से कम इस दर्द की जगह पर तो नहीं आओगे। पिता अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता हैं और उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन नरक की आग में इस आदमी ने कहा कि अगर कोई मौत से उठकर उन्हें चेतावनी देता है तो वे सुनेंगे। परंतु इब्राहिम ने कहा कि यदि वे भविष्यद्वक्ताओं की न सुने, तो यदि वह मरे हुओं में से जी भी उठा तो किसी की भी न सुने। हमारे कितने दोस्त और रिश्तेदार इस दिन नरक की दर्दनाक आग में हैं और चाहते हैं कि वे वापस आ सके और हमें नरक की सच्चाई और वास्तविकता से आगाह कर सकें। वे वापस नहीं आ सकते। हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मरे हुओं में से जी उठा और कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया? केवल कुछ ही। नरक में दुख केवल थोड़े समय के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए है। हे परमेश्वर के श्राप के अधीन मुझसे दूर, उस अनंत आग की ओर जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25 पद 41। तब शैतान, जिसने उन्हें धोखा दिया था, आग और गंधक की झील में डाल दिया गया था, और वे हमेशा और हमेशा के लिए दिन रात तड़पते रहेंगे। जिस किसी का नाम जीवित की पुस्तक में नहीं लिखा गया था, वह था आग की झील में फेंक दिया। प्रकाशित वाक्य 20 पद 10 से 15। वहां के कीड़े जो उन्हें खाते हैं, वे कभी नहीं मरते, और जो आग उन्हें जलाती है, वह कभी बुझती नहीं। मार्क 9 से 48। नरक पीड़ा और पीड़ा और पीड़ा का स्थान है। बाइबल हमें बताती है कि रोना और दांत पीसना होगा। आग दर्द का कारण बनती है और लोग रोते नहीं रोते हैं, और अगर वे मर जाते हैं तो उनके दांत पीसते हैं, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या यदि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन है, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 20 पद 12 में पढ़ते हैं, और मैंने मरे हुओं को, क्या बड़े क्या छोटे, एक समान सिंहासन के सामने खड़े देखा। यदि हम मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी आग की पीड़ा और पीड़ा को भोगेंगे। नरक में कौन जाता है? शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए नरक तैयार किया गया था। वे सभी जो पाप करते हैं और शैतान की आवाज सुनते हैं और जिनके नाम जीवित पुस्तक में नहीं लिखे हैं, वे भी इस दंड के स्थान पर जाते हैं। मत्ती 25 पद 41 और प्रकाशित वाक्य 20 पद 15। इसमें हम सभी शामिल हैं, आप और मैं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की बचाने वाली उपस्थिति से बहुत दूर है। रोमियो 3 पद 23। पाप एक मनुष्य के द्वारा जगत में आया और उसका पाप उसके साथ मृत्यु भी ले आया। इस कारण मृत्यु सारी मनुष्य जाति में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 5 पद 12। आदम के पाप के कारण हम सब पर मृत्यु आ गई है और आपको और मुझे मरना है। इसी प्रकार पाप तुम पर और मुझ पर आ पड़ा है और हम सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। हमारे पास पापी स्वभाव है, जिसमें पाप करने और परमेश्वर की अवज्ञा करने की इच्छा है। लोगों को पाप करना सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वे इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं। लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसे अपना जीवन देना और उसकी सेवा करना सिखाया जाना चाहिए। सभी मनुष्यों के पापी स्वभाव के कारण हम सब परमेश्वर की बचाने वाली उपस्थिति से बहुत दूर हैं और नरक की ओर बढ़ रहे हैं। हम इसे जानना चाहते हैं या नहीं, हम एक भयानक नरक की ओर खिसक रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, भगवान भगवान, और हर हफ्ते कुछ चर्च समारोह दोहराते हैं, लेकिन भगवान को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं और फिर से पैदा नहीं हुए हैं। वे भी निश्चय ही नरक में पाए जाएंगे। मत्ती 7 पद 21 से 23। ऐसे लोग भी हैं जो ईसाई होने का दावा करते हैं लेकिन अच्छे फल नहीं लाते हैं, जिन्हें भी आग में डाल दिया जाएगा। मत्ती 7 पद 19। हमारे पापी स्वभाव के कार्य जो हम में नहीं होने चाहिए, वे हैं अनैतिक, गंदी और अशोभनीय कार्य, मूर्तियों और जादू टोना की पूजा में। लोग दुश्मन बन जाते हैं और वे लड़ते हैं, वे ईर्ष्या, क्रोधित और महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। वे पार्टियों में अलग हो जाते हैं और वे जलते हैं, पियक्कड़ होते हैं, तांडव करते हैं और इस तरह के अन्य काम करते हैं। मैं अब तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जैसे मैंने पहले किया है, जो लोग ऐसा करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। गलतियों 5 पद 19 से 21। अगर हम खुद को ईसाई कहते हैं तो दुनिया को हमें देखना चाहिए प्यार, खुशी, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलतियों 5 पद 22 से 24। नरक में पाए जाने वाले वे लोग होंगे जो यीशु के बहुमूल्य लहू से शुद्ध नहीं हुए हैं, जो अपने पापों से नहीं मुड़े हैं, जिन्होंने परमेश्वर के उपहार को स्वीकार नहीं किया है, जो कि अनंत जीवन है, और जो अवज्ञा के माध्यम से व्यवहार करते हैं। सस्ते में परमेश्वर की वाचा का लहू, जिसने उन्हें पाप से शुद्ध किया। इब्रानियों 10 पद 29। यहोवा ने नीकुदेमुस से, जो एक यहूदी अगुवा था, बात की और उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म न ले तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यूहन्ना 3 पद 3। प्रभु उसे बता रहे थे कि भले ही वह एक अगुवा और बहुत अच्छा आदमी था, फिर भी उसे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए फिर से जन्म लेने की आवश्यकता थी। यदि हम नया जन्म नहीं लेते हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे जीवन जी रहे हों, हम निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। फिर उस व्यक्ति का क्या जो परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है, जो परमेश्वर की वाचा के लहू को सस्ती वस्तु मानता है, जिसने उसे पाप से शुद्ध किया। कौन अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है? जरा सोचिए कि वह कितना अधिक दंड का पात्र होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसने कहा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला दूंगा, और यह भी कहा, यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। इब्रानियों 10 पद 29 से 31। हमें नर्क कौन भेजता है? बहुत से लोग कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर प्रेम है, वह हमें कभी नर्क नहीं भेजेगा। फिर लोग नर्क में कैसे जाते हैं? भगवान ने अपने महान प्रेम में हमारे लिए बचने का एक रास्ता बना दिया है, और यह तय करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से छोड़ दिया गया है कि वह अनंत काल कहाँ बिताना चाहता है। भगवान ने यह चुनाव आपके और मेरे पास छोड़ दिया है, और हम स्वर्ग और नरक के बारे में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हमें रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यदि हम परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को स्वीकार करने की उपेक्षा करते हैं, या यदि हम इसे स्वीकार नहीं करना चुनते हैं, बल्कि कुछ समय के लिए पाप के सुखों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हम अपने आप को नरक में भेज रहे हैं, क्योंकि वहां जाने का यही रास्ता है। आपको और मुझे स्वर्ग और नरक दोनों का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन यह आप और मैं हैं जो तय करते हैं कि कौन सा रास्ता लेना है और कौन अपने गंतव्य के लिए सड़क पर चलना है। हम कैसे बचेंगे? भगवान ने हमारे लिए बचने का एक रास्ता बनाया जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिसे स्वीकार करने से पहले आपको एक अच्छा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, और जो आपको इसके लिए काम करने के लिए नहीं कहता है। ईश्वर का मार्ग मुक्त है, यह पापी के साथ साथ अच्छे व्यक्ति के लिए भी है। इसे एक ऐसे बच्चे द्वारा समझा और स्वीकार किया जा सकता है जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है और साथ ही एक वयस्क भी है। यह अद्भुत, गौरवशाली है और शांति और आनंद लाता है। परमेश्वर का मार्ग हमारे कंधों से पाप का भारी भार उठा लेता है, और परमेश्वर का जुआ आसान है और उसका भार हल्का है। मत्ती 11 पद 28 से 30। परमेश्वर का मार्ग क्षमा करना और हमारे पापों से फिरना है। हमें अपने द्वारा किए गए पापों के लिए वास्तव में खेद होना चाहिए और उनसे फिरना चाहिए। लेकिन अब मैं खुश हूँ, क्योंकि आपकी उदासी ने आपको अपना रास्ता बदल दिया। भगवान द्वारा उपयोग की जाने वाली उदासी के लिए हृदय का परिवर्तन होता है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। 2 कुरिन्थियों 7:9-10। उन कामों को करो जिनसे पता चलेगा कि तुम अपने पापों से फिर गए हो। मत्ती 3:8। मैं तुमसे कहता हूँ कि एक मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग में उन 99 धर्मियों से अधिक आनंद होगा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। लूका 15:7। जो लिखा है वह यह है, अवश्य है कि मसीह दुख उठाए और 3 दिन के बाद मृत्यु में से जी उठे, और उसके नाम से मन फिराव और पापों की क्षमा का संदेश सब जातियों को सुनाया जाए। लूका 24:46-47। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि ईश्वर दयालु है, क्योंकि वह आपको पश्चाताप करने के लिए नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है। रोमियो 2:4। जब पवित्र आत्मा के विश्वास से हमने देखा कि हम कितने महान पापी हैं और हमें खेद है और पश्चाताप है, तो हमें अपने पापों को भी उसके सामने स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हमारे सभी पापों से शुद्ध करेगा। 1 यूहन्ना 1:9। हमें भी विश्वास करना चाहिए और विश्वास में स्वीकार करना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। जैसे मूसा ने रेगिस्तान में एक खंभे पर पीतल के सांप को उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा किया जाना चाहिए, ताकि हर कोई जो उस पर विश्वास करे वह कर सके अनंत जीवन पाओ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह न मरे परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में उसका न्यायी होने के लिए नहीं भेजा, परंतु उसके लिए उसका उद्धार करता हो। जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है उसका न्याय नहीं किया जाता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है उसका न्याय पहले ही किया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है, जो पुत्र की अवज्ञा करता है उसे जीवन नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर के दंड के अधीन रहो। यूहन्ना 3:14-18-36। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मेरी बातें सुनकर उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारे अपने प्रयत्नों का नहीं, परंतु परमेश्वर का वरदान है कि कोई उस पर घमंड न करे। इफिसियों 2:8। क्योंकि आदम ने पाप किया, मृत्यु और पाप सब मनुष्यों पर आ पड़ा, परंतु क्योंकि यीशु पापरहित परमेश्वर का पुत्र हमारे स्थान पर तुम्हारे और मेरे लिए मरा, हम अनंत जीवन पा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार आदम के साथ एकता के कारण सब लोग मरते हैं, उसी प्रकार मसीह के साथ अपनी एकता के कारण सब जिलाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:22। इसलिए आप देखते हैं कि हमें जो करना है वह बहुत कम है और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। हमें केवल अपने पापों के लिए खेद करना है और उनसे मुड़ना है, स्वीकार करना है और विश्वास करना है, और यीशु मसीह को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। वह जो सभी भुगतान और देने का काम करता है वह प्रभु यीशु है। उसने कलवारी के क्रूस पर अपने स्वयं के जीवन के साथ आपके उद्धार के लिए भुगतान किया। वह अपने बहुमूल्य रक्त से हमारे दिलों को शुद्ध करता है। वह हमारे कई पापों को क्षमा करता है। वह हमें ईश्वर की संतान बनने का अधिकार देता है और वह हमें स्वीकार करता है और हमें अपना बनाता है। यूहन्ना 1:12। यीशु कितना अद्भुत, गौरवशाली और मुक्त उद्धार प्रदान करता है। इस उद्धार को प्राप्त करें और अभी यीशु को स्वीकार करें। एक अधर्मी व्यक्ति एक बार एक ईसाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका धर्म किसी काम का नहीं है और वह इसके लिए कभी भी बेहतर नहीं होगा। अविश्वासी ने पूछा, तुम्हारे यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है? ईसाई ने कहा, उसने मुझे बचाया है। अधर्मी व्यक्ति ने प्रश्न किया, और वह क्या है? और जब वह बोल रहा था तो उसके चेहरे पर एक अविश्वासी मुस्कान थी। ईसाई ने उत्तर दिया, मेरे साथ दरवाजे पर कदम रखो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए वे एक साथ दरवाजे पर चले गए और बाहर निकल गए। तब ईसाई ने सूखे पत्तों की एक मात्रा उठाई और उनका एक बड़ा घेरा या छल्ला बनाया। फिर उसने एक कीड़ा की तलाश की और एक को पाकर उसने उसे रिंग के बीच में रख दिया। फिर उसने कुछ माचिस ली और कीड़ा के चारों ओर सूखे पत्तों में आग लगा दी, जबकि अविश्वासी ने विस्मय से देखा। जैसे जैसे आग की गर्मी बेचारे कीड़ा के पास पहुंची, वह झुनझुनी और कड़कने लगी और संकट के लक्षण दिखाने लगी, लेकिन वह जलती हुई अंगूठी से बाहर नहीं निकल सकी। ईसाई ने फिर जल्दी से धुएं के माध्यम से अपना हाथ डाला और कीड़ा को अपनी खतरनाक स्थिति से बाहर निकाला और आग की पहुंच और सभी खतरे से बाहर हरी घास पर रख दिया। वहां ईसाई ने कहा, यही यीशु ने मेरे लिए किया है। मैं नरक की लपटों के संपर्क में था, वे मेरे चारों ओर थे और बचने की कोई संभावना नहीं थी। मैं एक महान पापी था जिसकी निंदा की गई और मैं नष्ट होने के लिए तैयार था, परंतु यीशु ने आग में से लाठी की नाई मुझे छीनकर मेरे पापों के लिथे मरकर मेरा उद्धार किया। जकर्याह 3:2। प्रिय मित्र, जैसा कि आप निश्चित रूप से नरक की आग में जा रहे हैं, क्या आप यीशु की ओर नहीं देखेंगे? उससे मुड़े और अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें और उसे स्वीकार करें और उसे आपको बचाने दें। एक क्षण और प्रतीक्षा न करें, बल्कि उसे अभी स्वीकार करें। आप कहीं भी हों, अपना हृदय प्रभु यीशु के लिए अभी खोल दें। वह तुम्हें प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि आप मरें। वह तुम्हें बचाना चाहता है। वह सिर्फ तुम्हारे रोने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब उसे पुकारो और वह अपना बेधा हुआ हाथ फैलाएगा और तुम्हें आग में से उठाएगा और तुम्हें हरी घास पर डाल देगा, जिससे कि अनंत विनाश का खतरा न हो। वह तुम्हें उस मार्ग पर खड़ा करेगा जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। अब उस पर भरोसा करो।